ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ గోపీజనవల్లభ గిరివరధారి యశోదానందన వ్రజ జనరంజన యశోదానందన వ్రజ జనరంజన యమునా తీరా వనచారి యమునా తీరా వనచారి జయ రాధమాధవ కుంజ బిహారీ జయ రాధమాధవ కుంజ బిహారీ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda, Radhe. Jai Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jai Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
पाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सतहिष्टवान गए सभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौप्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जाय। समवेत भक्त वृंद की जाय। समवेत भक्त वृंद की जाय। श्री श्री गुरु गौरांग की जाय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम् आराध्य भगवान् ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम् तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। कल शाम हम ये चर्चा कर रहे थे कि इंद्रदेव क्षमा याचना करते हुए श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और इन प्रार्थनाओं में इंद्रदेव जो कि एक भक्त हैं और भक्ति के तत्व जानते हैं भगवत तत्व भी जानते हैं परंतु वो कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं उनके ऐश्वर्य और शक्ति से। लेकिन जब होश फिर से ठिकाने आ जाते हैं तो जो दर्शन शास्त्र जो सिद्धांत उनको ज्ञात हैं उनको अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा। इंद्रदेव कह चुके हैं जैसे कि हम कल देख रहे थे एक महत्वपूर्ण बात स्वच्छंदोपात्त देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये। तो भी 5 मिनट के लिए हम केवल कल शाम के इस श्लोक के ऊपर जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी उसके बारे में फिर से हमारी स्मृति को ताजे करेंगे। तो ये बताइए कि इस श्लोक में कौन सी महत्वपूर्ण बात इंद्रदेव बता रहे हैं और क्या महत्व है इसका, क्या बताना चाह रहे थे इंद्र इस श्लोक में। भगवान का दिव्य शरीर है, उनका शरीर विशुद्ध सत्व से बना हुआ है, न कि कोई भौतिक पदार्थों से। चिन्मय आध्यात्मिक उनका देह है। किस गलत वाद का खंडन इस श्लोक के माध्यम से हो रहा है? मायावाद। क्योंकि मायावाद ये कहता है कि भगवान का शरीर मायामय है, परंतु सत्य तो ये है कि भगवान का शरीर चिन्मय है, मायामय नहीं है। और दूसरी बात, इस श्लोक के द्वारा हम ये सिद्धांत को जान सकते हैं कि भगवान अनेक रूप क्यों धारण करते हैं, क्यों स्वीकार करते हैं। तो दो कारण है, एक तो स्वयं अपनी इच्छा से भगवान विभिन्न रूप स्वीकार करते हैं और कभी अपने भक्तों के इच्छा अनुसार भिन्न भिन्न रूप भगवान स्वीकार करते हैं। तो चाहे अपने इच्छा के अनुसार हो या भक्तों के इच्छा के अनुसार हो, भगवान के भिन्न रूप प्रकट करने के लिए दो कारण बताए गए थे। तो दो कारण कौन से हैं? पहला कारण हाँ वो तो है, हाँ अलग अलग परिस्थिति के अनुसार वो विशेष रूप धारण करते हैं, जिसके लिए हमने उदाहरण दिए थे, अनेक उदाहरण दिए थे अनेक अवतारों के, जैसे कि भगवान हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए एक विशेष अवतार लिए थे, उसी प्रकार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ये सब विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे रूप भगवान ने लिए थे। तो जब कोई ऐसे खास उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति के लिए एक विशेष रूप ही धारण करना उपयुक्त होता है, तो भगवान वैसा रूप धारण कर लेते हैं परिस्थिति के अनुसार। तो ये एक कारण है। और एक उदाहरण है इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप क्यों धारण किया? बाह्य कारण है और आंतरिक कारण है। बाह्य कारण में ये आ गया, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना, हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन का उद्घाटन करना, युग धर्म का प्रसार प्रचार करना, ये तो बाह्य कार्य है। आंतरिक कार्य क्या था? राधा रानी का भाव समझने के लिए, क्योंकि भगवान की इच्छा होती है ये जानना कि मेरे भक्त मुझसे ज्यादा आनंद लेते हैं जब वो मेरी सेवा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, तो जो आनंद की अनुभूति उनको होती है वो मुझे नहीं होती। तो मेरी सेवा से जो आनंद प्राप्त होता है वो श्रेष्ठ है। तो मुझ में क्या है ऐसे गुण जिसके द्वारा मेरे भक्तों को इतना आनंद प्राप्त होता है सेवा में, उनके प्रेम में? तो श्री कृष्ण स्वयं को जानना चाहते हैं कि मुझ में कौन सी ऐसे गुण हैं, और साथ साथ जो उनके भक्त विशेष करके श्रीमती राधा रानी वो किस प्रकार के भाव का अनुभव करती हैं और क्या आनंद उनको मिलता है ऐसे भक्ति में, ऐसे प्रेम में, श्री कृष्ण जानना चाहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण एक भक्त का वेश स्वीकार करके पृथ्वी लोक में प्रकट होते हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु का भी रूप नित्य रूप है। गोलोक वृंदावन में भी एक और धाम है नवद्वीप, जहाँ चैतन्य महाप्रभु इसी रूप में नित्य रूप से निवास करते हैं, वहाँ संकीर्तन यज्ञ चलते रहता है। तो खैर ये दो कारण थे, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण क्या था? अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए ठीक है, लेकिन क्या केवल अपनी इच्छा से, भक्तों की इच्छा से? और इसके लिए उदाहरण दिया गया था वैदुर्य मणि का। मणिर यथा विभागेन नील पीतादिभिर युतः रूप भेदम अवाप्नोति ध्यान भेदम तथा अच्युत। जिस प्रकार से वैदुरी मणि जिस वस्तु का स्पर्श करती है उस वस्तु के रंग को स्वीकार करती है और प्रकट करती है, और ऐसे लगता है कि वैदुरी मणि जो है नीले रंग की है, लेकिन जब पीले वस्तु को स्पर्श करती है वैदुरी मणि तो वैदुरी मणि पीला लगता है। तो जिस प्रकार से वस्तु स्पर्श भेद से वैदुर्य मणि का रंग भेद होता है, ठीक उसी प्रकार से भक्तों के ध्यान भेद या भाव भेद से भगवान का रूप भेद होता है। बहुत सरल बात है। तो जैसे जैसे भिन्न भिन्न भावों में भक्त लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, उनका संग करना चाहते हैं, वैसे वैसे भगवान रूप धारण करते हैं। और ऐसे कई बातें चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को सुनाई थी, इसकी भी चर्चा हुई थी। तो अब इंद्रदेव अपनी प्रार्थना आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं, मयेदं भगवन् गोष्ठ नाशाया सर्वायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्र मन्युना। मया इदं गोष्ठ नाशाय आसार वायुभिः। मेरे द्वारा गोष्ठ का, अर्थात ये जो गो भूमि है वृंदावन, इसको नाश करने का, नाशाय आसार वायुभिः, आसार अर्थात बहुत ही जोर से बारिश आने से और तेज गति के पवन वायु आने से मैंने नाश करने का प्रयास किया, परंतु चेष्टितम विहते यज्ञ मानिना तीव्र मन्युना। तो मैंने ऐसे कार्य क्यों किया? चेष्टितम विहते यज्ञ, जब मेरे लिए एक यज्ञ किया जा रहा था, वो यज्ञ बंद किया गया, तब क्या हुआ? मानिना, मुझे बहुत अहंकार बढ़ गया मेरा, तीव्र मन्युना, और इस अहंकार के कारण मुझे तीव्र क्रोध आया। और ऐसे अहंकार से प्रेरित तीव्र क्रोध के कारण मैंने सारे ब्रज भूमि का विनाश करने का प्रयास किया। ऐसे इंद्रदेव स्पष्ट अब हृदय खोल के बात कर रहे हैं, मेरी गलती हुई, मैंने ही किया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इंद्रदेव के मन में एक विचार हुआ होगा कि शायद श्री कृष्ण कह दें कि अरे इंद्र, जिस प्रकार से तुम मेरी स्तुति कर रहे हो, इससे स्पष्ट होता है कि तुम मेरे भक्त हो। तो ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारे जो सामवर्तक बादल हैं, तुम्हारे अनुमति के बिना यहां वृंदावन के ऊपर आए होंगे और उन्होंने ऐसे पानी यहां बरसाया होगा, इसलिए तुम्हें सामवर्तक बादलों को दंड देना चाहिए। तो इंद्रदेव ने सोचा, कहीं भगवान ऐसे ना सोचें, यदि ऐसे सोचें तो ठीक नहीं है, कम से कम भगवान के सामने कपटी व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो साफ साफ जो है स्पष्ट कह देना चाहिए कि मैंने ही किया था, मैं ही कारण था इसका। तो इसलिए इस श्लोक में वो कह ही देते हैं कि मैंने प्रयास किया, मुझे अहंकार हो गया था, क्रोध हो गया था। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण और इंद्रदेव के बीच में उस समय एक इस प्रकार का संवाद हुआ होगा कि कृष्ण इंद्र से कह रहे हैं कि अरे, मेरे भक्त तो ऐसा काम नहीं करते, तो ये कैसे हो गया? हाँ, हुआ ये भगवान कि जब मेरे लिए यज्ञ संपन्न किया जा रहा था और वो रोका गया, तो मुझे गुस्सा आया। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं ना, हाँ, तुम मेरे सेवक हो, जब स्वामी ने सेवक के लिए कोई यज्ञ बंद कराया है, तो उसमें मेरा सेवक ऐसे व्यवहार क्यों करेगा, ऐसे कैसे कर सकता है? तो इंद्र उत्तर देते हैं कि हे प्रभु, जिसके अंदर घमंड है ना, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ मैं समझता हूँ घमंड है, लेकिन मेरा मेरे भक्त के अंदर जब घमंड आ जाता है तो वो अपनी बुद्धि से इस घमंड का दमन करता है। हाँ हे कृष्ण, आपका कहना सही है, परंतु तीव्र मन्युना इतना क्रोध हो गया था मुझे कि क्रोध से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए मैंने ऐसा काम कर डाला। भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से क्या क्या होता है आगे श्रृंखला बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्रोधात भवति सम्मोहः, जब ज्यादा क्रोध व्यक्ति को हो जाता है तो वो मोहग्रस्त हो जाता है, सत्य से हट जाता है, उसे पता नहीं चलता है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, परिस्थिति मेरे सामने वास्तव में क्या है वो भूल जाता है। सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, और ऐसे सम्मोह में पड़कर उसकी स्मृति शक्ति भी भ्रमित हो जाती है, वो भूल जाता है कि पिछली बार मैं गुस्सा हुआ था तो कितनी तकलीफ हुई थी, तो मुझे फिर से नहीं गुस्सा होना चाहिए कि उस बार ऐसे ऐसे मुझे भुगतना पड़ा था। स्मृति खराब हो जाती है, यह सामने वाले व्यक्ति ने कितना मेरे लिए किया होगा, अब इस समय हम भूल जाते हैं। स्मृति भ्रमशाद, और जब स्मृति इस प्रकार से भ्रमित हो जाती है, नष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रमशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि का विनाश होता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि का विनाश होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्तों के अंदर भी ये संभव है, जब तक कि हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे पूरी तरह से, हमारे अंदर हृदय के भीतर जितने भी कोने कोने में कलमश हैं, जब तक वो पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो जाते तब तक ये संभावना हमेशा रहेगी कि हम घमंड क्रोध ऐसे रजगुण और तमोगुण के से उत्पन्न होने वाले भावनाओं के शिकार बन जाएं। इंद्रदेव जो इतने महान व्यक्ति हैं, हालांकि इस समय में इंद्रदेव के प्रति समझिए कि निंदात्मक दृष्टि से चर्चा की जा रही है, परंतु इंद्रदेव की निंदा वैसे नहीं करनी चाहिए क्योंकि है वो एक महान व्यक्ति, विशेष करके भगवान ने उनको चुना है कि वो देवताओं के राजा बने, मंत्रियों के सभा के वो मुखिया हैं, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के भक्त भी हैं और बहुत शूर वीरता भी प्रदर्शित करते हैं देवलोक की रक्षा में, असुरों का वध करने में। परंतु कभी कभी जब इंद्रदेव ऐसे अपने घमंड के शिकार हो जाते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, वो भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से इस दुनिया में भी देखा जाता है, ऐसे रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से कभी कभी भक्त भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो सदैव अपने आप को अच्छे संग में रखें और बुरे संग से अपने आप को बचाए रखें, विशेष करके रजोगुण और तमोगुण के संग से हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए। इंद्रदेव अब ऐसा कह रहे हैं, कवि कर्णपुर कहते हैं आनंद वृंदावन चंपू में कि हे कृष्ण, मेरा अहंकार जो है वो एक शराब जैसे है, और उस शराब को मैंने जी भर के पी लिया है, और ऐसे इस शराब को पीकर मैं उन्मत्त हो गया था। किस चीज के शराब पर उन्मत्त हुए थे इंद्र? घमंड पर, उनके घमंड के शराब को पिए थे, और घमंड के शराब को पीकर वो उन्मत्त हो गए थे, और ऐसे उन्मत्त अवस्था में उनको पता नहीं चला कि वो कौन है और क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से शराब के नशे में घूमता हुआ आदमी सड़क पर वो कुछ भी कहता है, कुछ भी करता है, उसको ये होश नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, तो उसी प्रकार से ये घमंड जब आ जाता है व्यक्ति के अंदर, ये भी एक नशे के बराबर होता है। और फिर आगे इंद्रदेव कहते हैं, त्वया ईश अनुग्रहीत अस्मि, लेकिन हे प्रभु, मैं अभी आपके कृपा का पात्र हो गया हूँ। क्यों, आपने मेरे ऊपर कृपा कैसे की है? ध्वस्त स्तंभ, आपने मेरे स्तंभ या मेरे घमंड का नाश किया है, मेरे घमंड का नाश करके आपने मेरे ऊपर कृपा की है, ये है आपकी कृपा। वृथा उद्यम, और मेरा जो उद्यम है, परिश्रम है, जैसे उद्यम बाग में करते हैं लोग परिश्रम, तो मेरा परिश्रम जो है आपने व्यर्थ कर दिया, ये आपकी कृपा है मेरे ऊपर। ईश्वरम गुरुम आत्मानम, आप ईश्वर हैं, आप गुरु हैं, आप मेरे आत्मा की आत्मा हैं, इसलिए त्वाम अहम शरणम गतः, इसलिए अब मैं आपके शरण में आया हूं। इस प्रकार से इंद्र अब श्री कृष्ण के शरण को स्वीकार करते हैं और अपनी प्रार्थना को यहाँ समाप्त करते हैं। शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, एवं संकीर्ततः कृष्णो मघोना भगवान अमुम मेघ गंभीरया वाचा प्रहसन इदम अब्रवीत। एवं संकीर्ततः कृष्णो, इस प्रकार से जब श्री कृष्ण की कीर्ति का गान हुआ, जब श्री कृष्ण की स्तुति हुई, किनके द्वारा? मघोना भगवान अमोम, मघोना अर्थात इंद्र के द्वारा। तो इंद्र के द्वारा जब इस प्रकार से श्री कृष्ण की स्तुति हुई, तब क्या हुआ? प्रहसन, श्री कृष्ण हल्के मुस्कान से मेघ गंभीरया वाचा बोलने लगे, कुछ कुछ शब्द कहे इंद्रदेव ने, लेकिन वो इंद्र के शब्द कैसे थे, कृष्ण के शब्द कैसे थे? मेघ गंभीरया, जैसे जब बादलों की गड़गड़ाहट होती है ना, कैसे गंभीर आवाज आती है मेघों से, वर्षा ऋतु में ऐसे ध्वनि सुनाई पड़ती है कभी कभी, तो श्री कृष्ण ने ऐसे आवाज में, ऐसे घने आवाज में हसमुख चेहरे से इंद्र से कुछ कहना शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये देखिए, 7 साल का बच्चा होता है, उसका आवाज कैसे होता है? बच्चों की तरह होता है ना, मेघ की तरह गंभीर होता है। तो इसका मतलब है कि हालांकि श्री कृष्ण 7 वर्ष के हैं, ग्वाल बाल का स्वरूप स्वीकार करके एक साधारण बालक की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं वृंदावन में, फिर भी इंद्रदेव को उपदेश देने के लिए उन्होंने अपना भगवत भाव को स्वीकार किया। उस 7 साल के शरीर में, 7 वर्ष के बालक के शरीर में उन्होंने भगवत स्वरूप धारण किया, वो भाव। आपको याद रहेगा, जब ब्रह्मा जी के साथ इसी प्रकार की एक घटना हुई थी, जब ब्रह्मा जी देखना चाहते थे कृष्ण के ऐश्वर्य को, तो उस समय क्या हुआ था? ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री कृष्ण ने अघासुर का वध किया, इतने छोटे बालक और ऐसे भयंकर असुर का वध किया, जिस असुर को देखकर देवतागण भी भयभीत हो रहे थे, और इस छोटे से 5 साल के बालक ने इसको मार दिया, तो और अभी बैठ के यमुना के तट पर अपने मित्रों के साथ, वो एक हाथ में चावल है, दही और चावल, और दूसरे हाथ में फल के टुकड़े हैं, और ऐसे बाएं दाएं हाथ से खाए जा रहे हैं। वैसे बाएं हाथ से नहीं खाते हैं ना, खाते हैं तो दाएं हाथ से केवल खाते हैं। तो ब्रह्मदेव का मन जो है थोड़ा सा विचलित हो गया, भ्रमित हो गया। अरे ये क्या हरि है, कृष्ण है, ये भगवान है। अघासुर को मारा तो इससे लगता है कि भगवान होना चाहिए, परंतु यदि भगवान है तो इस प्रकार का अन्न थोड़ी खाएगा। भगवान तो 56 भोग स्वीकार करते, इससे कम तो कुछ नहीं, और शानदार भोग होना चाहिए। और ये भी थोड़े साधारण गांव के बच्चों के साथ बैठ के क्रीड़ा कर रहे हैं यमुना के तट पर, तो क्या यही हरि है, मैं भी देखना चाहता हूँ। इनके ऐश्वर्य का प्रदर्शन, इनकी शक्ति का प्रदर्शन मैं भी देखना चाहता हूँ। अब मैं मेरी योग शक्ति का प्रदर्शन जब करूंगा तो देखते हैं कृष्ण का क्या प्रतिकार करते हैं इसका। क्या कृष्ण इससे ज्यादा ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेंगे या श्री कृष्ण चुपचाप बैठ जाएंगे, मैं देखना चाहता हूँ। तो इंद्रदेव ने ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया, गुफे में रख दिया और वापस चले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के एक क्षण बाद वो फिर से लौट के आए, जब यहाँ एक साल बीत चुका था पृथ्वी लोक के ऊपर, और उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उन्हीं ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं और जो बछड़े हैं वो भी वही हैं। तो ब्रह्मदेव बहुत भ्रमित हो गए, इन्होंने सोचा अरे ये क्या है। फिर वो गुफे में गए, गुफे में भी वो लड़के थे और बछड़े थे और यहाँ कृष्ण के पास भी थे, तो कौन सही है कौन नकली है, ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया। बहुत गौर से यहाँ बैठे एक जगह, बस निरुत्तर होकर एक जगह खड़े हो गए, मानो कि वो एक प्रतिमा हो गए। ये क्या हुआ, मैं ब्रह्मा हूँ, सृष्टि करता हूँ, मैं सबको वरदान देता हूँ, और ये ऐश्वर्य का प्रदर्शन ये कैसे है जिसने मुझे ही भ्रमित कर दिया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर श्री कृष्ण वहां थे, 5 साल के बालक, 7 साल के भी नहीं, गोवर्धन लीला के समय तो वो 7 साल के थे, परंतु इस ब्रह्मा जी के साथ जो लीला हुई, ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, उसमें श्री कृष्ण केवल 5 वर्ष के थे, छोटे से बालक, और उस बालक की भूमिका को बनाए रखा उन्होंने। श्री कृष्ण आ रहे थे, मेरे बछड़े कहाँ गए, मेरे मित्र कहाँ हैं, ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े हैं और उन्होंने स्तुति की। उस समय श्री कृष्ण ने सोचा कि थोड़ा मजाक कर लें, अपने आप को विस्तार कर लिया, जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी बछड़े थे, उनका सब चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया और ब्रह्मा जी का सर चकरा गया, बल्कि चारों सर चकरा गए। और ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य क्या है, उनका स्थान क्या है। फिर आके उनकी स्तुति की। इंद्रदेव की स्तुति तो कम है, ब्रह्मा जी की स्तुति तो एक पूरे अध्याय में है, इस दशम स्कंद के 14वें अध्याय में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी ने कहे हैं। परंतु उस समय श्री कृष्ण ने क्या भाव स्वीकार किया, चुपचाप रहे, एक शब्द नहीं कहा। ब्रह्मा जी कह रहे थे कि मैं आपके वृंदावन धाम में आके एक घास का तिनका बनना चाहता हूं, अब मैं समझ गया हूं कि आप कौन हैं और आपके वृंदावन, आपका वृंदावन क्या है और आपके ब्रजवासी भक्त कौन हैं, अब मैं समझ गया। और मैं ब्रजवासी तो नहीं बन सकता उनकी तरह, मैं उस योग्य नहीं हूं, परंतु घास का तिनका तो बनना चाहता हूं। परंतु श्री कृष्ण ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई अपना पद छोड़ के चले जाओगे तो सृष्टि का काम संभालेगा कौन, ये तो पलायनवाद हो जाएगा, करना तो मेरी सेवा ही है ना, तो वहीं पर मेरी सेवा करो, ब्रह्मलोक में रह के सृष्टि का पालन करो, जब ये ड्यूटी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी तब वृंदावन में चले आना। तो ये कहने का अभिप्राय था भगवान की शांति का। तो प्रार्थना को बढ़ाते बढ़ाते फिर अंत में ब्रह्मा जी समझ गए कि अब मुझे ब्रह्मलोक ही जाना होगा। तो फिर श्री कृष्ण से अनुमति चाही, अनुमति जब चाहे फिर भी श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, मौनम सम्मति लक्षणम, ऐसे कहते हैं ना कि मौन भी सम्मति का लक्षण है। तो फिर ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि भगवान श्री कृष्ण ने अब अनुमति दे दी वापस जाने के लिए, तो वो चले गए। तो श्री कृष्ण ने ऐसे भाव रखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये चार सर वाले चतुर्मुख ब्रह्मा कौन है, ये आदमी एकदम स्वर्ण रंग के हैं, दिखने में बहुत सुंदर हैं, और ये आके तरह तरह के कविताएं बोल रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, कौन है ये, क्यों आए हैं, और ऐसे क्यों बोले जा रहे हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं, मैं तो एक ग्वाल बाल हूं, मुझे ये सब क्या पता, ये सब ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि करता, ये सब मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे इतना ही पता है कि मैं मेरे बछड़ों को ढूंढ रहा हूं, मेरे मित्रों को ढूंढ रहा हूं। ये भाव अंत तक कृष्ण ने बनाए रखा, ग्वाल बाल का रूप, उसी में रहे वो, उसी रूप में रह के उस भाव का आनंद ले रहे थे। और ऐसे उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ बर्ताव किया, ब्रह्मा जी को पूरा सबक मिल गया, हाँ समझ गया, आपकी शांति से मुझे सारा बड़ा प्रवचन मिल गया। परंतु यहां पर वो अब बोल रहे हैं, हालांकि शरीर वही है एक 7 साल के बालक का, परंतु मेघ गंभीर या वाचा प्रहसन, हल्की सी मुस्कान है चेहरे पर, परंतु बादलों के गरजने के समान गंभीर वाणी में श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसे ही ठीक, इससे ज्यादा, बल्कि इससे ज्यादा गंभीर आवाज में श्री कृष्ण बोल रहे हैं, परंतु इससे बहुत ज्यादा मीठा, इतना नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच, मया ते कारि मघवन् मखभंगो नुगृणता मद अनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्रश्रिय भृशम्। हे मघवन, मघवन इंद्र का नाम है, मया ते अकारि मखभंगो, मैंने मख अर्थात यज्ञ, तुम्हारे यज्ञ का भंग जो है मैंने किया, जैसे तुम स्वीकार कर रहे हो ना कि तुम्हारी गलती, मैं भी कह रहा हूं मैंने तुम्हारे यज्ञ का को भंग किया, क्यों किया, अनुग्रहणता तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए किया है, ईर्ष्या से नहीं, द्वेष से नहीं, क्रोध से नहीं, परंतु केवल तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए, तुम्हारे लिए जो यज्ञ संपन्न किया जा रहा था उसको मैंने भंग किया है। और क्यों, कृपा किस तरह से, मैं क्या चाहता था तुमसे, मत अनुस्मृतये नित्यम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सदैव मेरा स्मरण करो, तुम मेरे भक्त हो ना, अंततः भक्त का काम होना चाहिए ना ये मेरा स्मरण करना, और कहां मेरे स्मरण करने का कार्य और कहां ये सब तुम करने बैठे, तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा करना चाहता था कि मेरे भक्त के अंदर ये घमंड कहां से आ गया, घमंड तो असुरों के अंदर होना चाहिए, तो मेरे भक्त के अंदर आ गया तो ये अच्छा नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर मैंने ये असीम कृपा कर ली। मत्तस्य इंद्र श्रिया भृशम, क्योंकि मत्त तुम उन्मत्त हो गए थे, किस चीज से उन्मत्त हो गए थे, इंद्र श्रिया, इंद्र पद के ऐश्वर्यों से तुम उन्मत्त हो गए थे, बहुत ज्यादा भृशम, बहुत ज्यादा नशे में आ गए थे तुम, तुम्हारे ऐश्वर्य का, तुम्हारे पद के ऐश्वर्य का, इसलिए मैंने ऐसी कृपा की तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारा घमंड मैंने हर लिया। तो ये भगवान कृष्ण की कृपा होती है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये हृदय से हृदय दोनों बात कर रहे हैं अभी, भगवान और इंद्र, गुह्यम आख्याति पृच्छति, दोनों हैं साथ में, केवल सुरभि देवी एक साक्षी वहां है, और बस दोनों एकांत स्थान में कह रहे हैं, प्रभु मेरी गलती हुई, और श्री कृष्ण कह रहे हाँ मैंने भी तुम्हारा यज्ञ भंग किया और इसका कारण ये था। तो दोनों आपस में ऐसे बातचीत कर रहे हैं। तो जब भगवान ऐसे बात करते हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो भी घमंड से बात करते हैं। जब कोई साधारण व्यक्ति कहेगा कभी मैं चाहता हूं कि मेरा गुणगान हमेशा करना चाहिए, मेरा फोटो यहां वहां छपाना चाहिए, तो फिर वो घमंड से या मिथ्या अहंकार से बोल रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो केवल कृपा के भावना से बोल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ जितने भी जीव हैं भौतिक सृष्टि में वो सब उनके पास लौट के आए, न कि यहाँ पर वो इस संसार के चक्र में अटक के पड़े रहे। इंद्रदेव भी तो यहाँ पे लाखों लाखों साल तक हैं, वो भी चाहते हैं कि वो ऐश्वर्य से उन्मत्त न होकर उनकी शुद्ध भक्ति करें। और वैसे श्री कृष्ण के सामने इंद्रदेव तो वास्तव में बच्चे ही हैं। इंद्रदेव कितने सारे आते हैं और जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, कितने इंद्र हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में कोई बता सकते हैं? 14। अभी ब्रह्मा जी का आधा दिन बीत गया है, ये दिन जो है ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र होते हैं, हर एक मनमंत्र में एक इंद्र, 14 मनमंत्र होते हैं, 71 चतुर्युग जो होते हैं ये एक मनमंत्र होता है। चतुर्युग अर्थात कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सत्ययुग, इसको चतुर्युग कहते हैं। जब ये चतुर्युग 1000 बार दोहराता है तो ब्रह्मा जी के एक दिन हो जाता है ये, और 1000 चतुर्युग में से 14 भाग कीजिए तो 71 चतुर्युग हो जाते हैं। तो ये एक मनमंत्र की अवधि होती है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनमंत्र में 14 देवताओं के वर्ग होते हैं अलग अलग। पहले मनमंत्र में कोई जो विशेष पुण्यात्माएं हैं उनको देवताओं का स्थान मिलता है। ये देवता क्या है, ये एक पद है, जैसे कि यहां मंत्री है, ये एक पद है। हर चुनाव के बाद मंत्री बदलते रहते हैं, कभी कभी चुनाव के पहले भी बदलते हैं। तो उसी प्रकार से देवतागण ये पद है। तो पहले मनमंत्र में कोई विशेष आत्माओं को पद दिया जाता है, फिर दूसरे मनमंत्र में कोई और आते हैं, तीसरे में कोई और। तो हर बार कोई दूसरे अलग 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 जीव जो है वो इंद्र बन जाते हैं या वरुण बन जाते हैं या सूर्य देव बन जाते हैं। तो ऐसे 14 इंद्र एक दिवस में होते हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के एक साल में 360 दिन होते हैं और उनके 100 साल होते हैं। तो देखिए कितने इंद्र हुए ब्रह्मा जी के जीवन में, बस गणित करिए आप, नहीं करिए नहीं तो फिर प्रवचन खत्म हो जाएगा तब तक। बहुत सारे इंद्र होते हैं ब्रह्मा जी के सारे आयु में, और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, महाविष्णु का एक सांस, एक सांस। गए ब्रह्मा जी, गए सैकड़ों सैकड़ों हजारों इंद्र चंद्र वंद वरुण जो भी है सब आए भी गए भी महाविष्णु के एक सांस में। और यदि महाविष्णु भी प्राणायाम करने लगे सांस को रोकने के तो फिर तो बात ही फिर है। केवल महाविष्णु के साधारण सांस में देखिए कितना लंबे समय जाता है। और गोलोक वृंदावन की बात ही क्या फिर। और ये तो एक ब्रह्मांड है जिसमें एक ब्रह्मा जी हैं, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं। तो कुल मिलाकर सारे भौतिक सृष्टि में कितने इंद्र हुए, करोड़ों 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 इंद्र हुए महाविष्णु के एक सांस में। तो ये एक छोटे से ब्रह्मांड के एक छोटे से इंद्र कृष्ण के सामने क्या है? इंद्र तो क्या, ब्रह्मा जी भी क्या है? वो कहानी आपने सुनी होगी कि कि एक बार द्वारका में ब्रह्मा जी उनसे कृष्ण से मिलने आए थे और कृष्ण ने द्वारपाल से कहा कि ब्रह्मा जी आए हैं, अच्छा उनसे पूछो कौन से ब्रह्मा जी, उनका नाम क्या है। तो जब द्वारपाल में जाके ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, अरे ये कैसा प्रश्न है। तो अच्छा कह देना चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं, चार मुख वाले, ठीक है हाँ बुलाओ उनको अंदर। तो आ गए, अच्छा आओ आओ ब्रह्मा जी आइए, स्वागत है आपका, कहिए किस काम से आना हुआ। हे प्रभु मेरा काम तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, मैं किस लिए आया था, लेकिन पहले मुझे ये आपसे प्रश्न करना है कि आपने ये क्यों कहा कि कौन से ब्रह्मा जी आए हैं, क्या मतलब है कि इस ब्रह्मांड के अंदर और भी कोई ब्रह्मा है क्या। तो फिर श्री कृष्ण हंसे थोड़े बहुत और अपने ध्यान में ही जितने भी ब्रह्मांड थे उन सब के ब्रह्मा जीओं को बुलाया, शिव जी को बुलाए, इंद्र को बुलाए। तो कितने इंद्र ब्रह्मा शिव हुए, अनगिनत, और सब उस एक कमरे में उपस्थित हुए और सभी ने भगवान को प्रणाम किया, उनके मुकुट जो है नीचे जमीन पर पड़े और वो ध्वनि आई, वो बहुत भयंकर ध्वनि थी। और हरेक को श्री कृष्ण ने पूछा, एक ही बार श्री कृष्ण ने पूछा, हरेक को लगा कि कृष्ण मुझसे बात कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना आपके ब्रह्मांड में। हाँ प्रभु आपकी कृपा से मेरे ब्रह्मांड में सब कुछ ठीक चल रहा है, और भगवान की योग माया शक्ति के कारण कोई भी ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा को नहीं देख सकता था। उसे ऐसे लगा कि मैं अकेला ब्रह्मा ही हूं यहाँ पर, शिव जी भी नहीं देख पाए, इंद्रदेव अन्यों को नहीं देख पाए, केवल हमारे ब्रह्मा हैं ये सबको देख रहे थे। जितने भी इंद्र शिव ब्रह्म आए, ब्रह्मा जी आए हैं, हमारे ब्रह्मा जी उन सबको देख रहे थे भगवान की कृपा से। परंतु जितने और ब्रह्मा जी शिव जी इंद्रदेव सब आए थे वो आपस में एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, नहीं वो हमारे ब्रह्मा जी को देख पा रहे थे, बल्कि वो अपने 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 ब्रह्मांडों में ही स्थित थे। देखिए भगवान की शक्ति क्या है, अचिंत्य। और फिर श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है अब अपने अपने धाम में जाइए और ब्रह्मांड का काम अच्छी तरह से संभालिए, मेरा पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो सब ब्रह्मा जी सब चले गए और हमारे चतुर्मुख ब्रह्मा अपने प्रश्न को भूल गए, वो क्यों आए थे यहाँ पर ये देखकर उनको लगा कि मैं तो केवल चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ और यहाँ मैंने देखा एक 10 मुख वाले ब्रह्मा को, वहाँ 100 मुख वाले ब्रह्मा को, वहाँ 1000 मुख वाले ब्रह्मा को, 1,00,000 मुख वाले ब्रह्मा को, 10,00,000, 1 कोटि सर वाले ब्रह्मा जी, जितना बड़ा ब्रह्मांड उतने ज्यादा सर ब्रह्मा जी के मुख। तो क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी केवल 4 मुख हैं, तो हमारा ब्रह्मांड मध्यम वर्ग का है, बल्कि छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। तो समझ लीजिए कि कृष्ण कौन है, क्या है। और जिस प्रकार से लोग अनाप शनाप कुछ न कुछ बोलते हैं कि कृष्ण के बारे में, कुछ जानते नहीं है, बस बोले जाते हैं, केवल अपने अज्ञान का और अहंकार का प्रदर्शन करते हैं बस। यदि वो श्री कृष्ण को जानते तत्वतः तो ऐसी बातें नहीं करते। तो हमारे लिए इंद्रदेव तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ऐश्वर्यशाली है, परंतु श्री कृष्ण के लिए कौन है इंद्रदेव। श्री कृष्ण का सामना कर सकते हैं इंद्र, और वास्तव में सारे जीव श्री कृष्ण के बच्चे हैं, तो इंद्रदेव भी श्री कृष्ण के बच्चे हैं। तो हालांकि इस समय ऐसे ये लग रहा है कि श्री कृष्ण बच्चे हैं और इंद्रदेव बड़े हैं, परंतु क्योंकि श्री कृष्ण एक लीला कर रहे हैं इसलिए वो लग रहे हैं छोटे बच्चे। छोटे बच्चे होने के बाद भी वो पिता हैं इंद्रदेव के, जो बहुत बड़े दिख रहे हैं। और इस प्रकार से अभी इंद्रदेव को थोड़े अच्छे उपदेश श्री कृष्ण दे रहे हैं। हाँ जी, तो अभी और एक श्लोक यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं जो आप हम सब साथ में पढ़ेंगे। मामैश्वर्य श्रीमद् मदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति तं भ्रंशयामि सम्पद्भ्य यस्य चेच्छामि अनुग्रहम् मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति तं भ्रंशयामि सम्पद्भ्य यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। बोलिएगा मामैश्वर्य श्रीमदान्ध दण्डपाणिं न पश्यति तं भ्रंशयामि सम्पद्भ्य अनुग्रहम् मामैश्वर्य श्रीमदान्ध दण्डपाणिं न पश्यति क्षयात् सम्पद्भ्य यस्य चेच्छाम् अनुग्रहम्। अनुवाद: अपनी शक्ति तथा ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त मनुष्य मुझे अपने हाथ में दंड का डंडा लिए हुए अपने निकट नहीं देख पाता। यदि मैं उसका वास्तविक कल्याण चाहता हूँ तो मैं उसे भौतिक सौभाग्य के पद से नीचे खींच लेता हूँ। तो भगवान की कृपा जो है ये अलग अलग तरह से आ सकती है। जिस व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान नहीं है वो सोचता है कि भगवान की कृपा मतलब मुझे बहुत भौतिक चीजें मिलनी चाहिए, भोग की सुविधाएं मिलनी चाहिए और मुझे प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, धन मिलना चाहिए, ये भगवान की कृपा है। परंतु जो वास्तव में तत्वज्ञ है वो जानता है कि भगवान की कृपा विविध रूपों में आती है। बस व्यक्ति को उतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो समझ ले कि ये भगवान की कृपा है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐश्वर्य श्री मद अंधः। ऐश्वर्य और श्री मतलब शक्ति और धन आदि से जिसको घमंड हो जाता है, नशा हो जाता है, उस नशे से व्यक्ति अंधः अंधा हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में श्री कृष्ण कह रहे हैं माम दंडपाणिम न पश्यति, वो मुझे नहीं देखते हैं जो कि पास में खड़ा होता हूं मैं उनका। दंडपाणि, पाणी मतलब हाथ, दंड मतलब डंडा, दंड देने के लिए, दंड देने के लिए डंडा लेकर मैं पास में खड़ा हूं, परंतु न पश्यति, वो लोग मुझे नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्मत्त है अपने शक्ति से, अपने ऐश्वर्य से जो कि मैंने ही प्रदान किया हुआ होता है। तम भ्रंशयामी संपद्भ्यो, फिर मैं उसका पतन कराता हूं। भ्रंशयामी, मैं पतन कराता हूं उसका, कहां से? संपद्भ्यो, उसके ऊंचे संपदा से, संपदा के पद से, उसके समृद्धि के पद से, उसके प्रतिष्ठा के पद से मैं उसको गिरा देता हूं। यस्य च इच्छामि अनुग्रहम्, यदि मैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर कृपा करना चाहता हूं तो मैं ऐसे करता हूं। ऐसे नहीं कि उसकी मैं प्रतिष्ठा बढ़ा दूं, उसका धन बढ़ा दूं, उसको और भी ज्यादा पद दे दूं, नहीं, बल्कि उससे पद मुक्त करा देता हूं, उसे नीचे गिरा देता हूं। ये मेरी कृपा है, भगवान कहते हैं। भागवत में भी श्री कृष्ण कहते हैं यस्याहम अनुग्रणामि हरिषे तद्धनम शनै, जिस व्यक्ति के ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कहते हैं भगवान की हर एक के लिए ऐसे ही करूंगा, लेकिन कभी कभी जब इंद्रदेव जैसे घमंड का प्रदर्शन करते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, तब कभी कभी भगवान को करना पड़ता है ऐसे, और वो भी उस व्यक्ति के हित के लिए ही है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं। समोहम सर्वभूतेषु नमे द्विष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ते तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मेरी दृष्टि सारे प्राणियों के प्रति समान है। न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, न मैं किसी से द्वेष करता हूं, न कोई मेरे लिए अति प्रिय है। ये भजन्ति तू मतलब लेकिन ये भजन्ति माम भक्त्या, जो मुझे भक्ति भाव से पूजते हैं, भजते हैं, वो उनमें है और मैं उनमें हूं। वो मेरे मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजामि। हम जैसे हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान के प्रति हम व्यवहार करते हैं, भगवान उसी प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि वैसा हम चाहते हैं, हमारी इच्छा की ही पूर्ति करते हैं भगवान। फिर आगे श्री कृष्ण अंतिम आदेश देते हैं इंद्रदेव को। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम मे अनुशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वह स्तंभ वर्जितैः। गम्यताम शक्र, इंद्र का एक नाम है शक्र। गम्यताम, ठीक है, अब चले जाओ, तुम जा सकते हो इंद्र। अब भगवान का स्वरूप धारण कर रहे हैं, अब इंद्र अब चले जाओ। भद्रम वह, कल्याण हो तुम्हारा। क्रियताम ने अनुशासनम, लेकिन याद रखना मेरे अनुशासन के अनुसार चलना। इंद्रदेव का जो पद है उसको अच्छी तरह से पालन करना। स्थियताम स्व अधिकारेषु, तुम्हें जो पद दिया है मैंने, जो अधिकार दिया है इंद्रदेव का, देवराज का, उसमें अच्छी तरह से रहना, और जो तुमसे अपेक्षित है वैसे ही कार्य करना इस ब्रह्मांड के अनुशासन को संभालने के लिए। तुम मेरे प्रतिनिधि हो। युक्त बड़े सौम्य स्वभाव से रहना। वह स्तंभ वर्जित ही, और हमेशा घमंड से मुक्त रहना। तो भगवान कहना चाहते थे कि फिर से यदि ऐसा करोगे फिर से मुझे दंड देना पड़ेगा। ठीक है इंद्र, अब चले जाओ, लेकिन घमंड नहीं करना। यहां युक्त वह स्तंभ वर्जित ही कृष्ण कहते हैं। वह ये बहुवचन है। कृष्ण कह रहे हैं आप लोग घमंडी नहीं हो जाना। केवल इंद्र को क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि सारे देवताओं में कभी कभी ऐसे गड़बड़ हो जाता है। अभी आने वाले अध्याय में, इसके बाद वाले अध्याय में, 28वें अध्याय में हम देखेंगे कि वरुण देव भी कोई गलती करते हैं। इंद्रदेव ने तो किया है, ब्रह्मा जी ने भी किया है, अब आने वाले अध्याय में देखेंगे वरुण देव भी करने वाले हैं। तो सारे देवताओं के लिए वो थोड़ी सावधान करने के लिए उनको कुछ कह रहे हैं कि ताकि वो याद रखें, सावधान रहें, ऐसी एक चेतावनी दे रहे हैं ताकि वो ऐसी गलती आइंदा नहीं करें। तो इंद्रदेव बड़े शांति से सुन रहे हैं। हालांकि श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से कहा कि अहंकार की शिकार नहीं बनना, परंतु इंद्रदेव अहंकार की शिकार बने। कृष्ण ने ये आशीर्वाद नहीं दिया था कि तुम कभी भी घमंड के शिकार नहीं होगे, ऐसे नहीं कहा, ऐसे आशीर्वाद नहीं दी श्री कृष्ण ने, नहीं तो पारिजात की लीला कैसी हो सकती थी। जब ध्रुव महाराज भगवान के शरण में आए पहले तो ध्रुव महाराज कृष्ण के पास गए थे बड़ा राज्य मांगने के लिए। कृष्ण का दर्शन करने के बाद ये भौतिक इच्छा हृदय से पूरी तरह से मिट गई। भगवान ने पूछा, पूछो ध्रुव क्या चाहिए, जो भी जो मुंह मांगा तुम्हें मैं तुम्हें दे दूंगा। कहीं नहीं, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, अब मुझे और वरदान नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। काचम विचिन्मन अपि दिव्य रत्नम, मुझे अब अनमोल दिव्य रत्न प्राप्त हो गया है, अब मैं टूटे हुए कांच के टुकड़ों के लिए क्यों मैं पूछूं आप मांगू आपसे। तो भरपूर वरदान दिया, आशीर्वाद दिया भगवान ने ध्रुव महाराज को और कहा कि तुम मेरे पास आओगे, तुम्हारे लिए एक विशेष मैं लोक बना रहा हूं, ध्रुव लोक, ध्रुव तारा, जो उत्तर दिशा में आप देखेंगे जो ध्रुव लोक का तारा है। उत्तर कौन सी है ना, उत्तर उस इस दिशा में, इस दिशा में ऊपर देखेंगे आप ध्रुव तारा आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपको अभी कई सालों तक, 36,000 सालों तक यह राज्य करना है और मैं ये वरदान देता हूं कि तुम्हारी इंद्रियां वश में हमेशा रहेंगी और तुम्हें घमंड नहीं होगा। तो भगवान ने ऐसे भी वरदान दिए हैं, प्रहलाद महाराज को भी ऐसे ही वरदान दिया, अब तुम तुम्हारे पिताजी के सिंहासन में बैठो, मेरा प्रतिनिधि बनकर तुम राज्य संभालो और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी इंद्रियां वश में रहेंगी, तुम सदैव मेरा स्मरण करते रहोगे। तो ध्रुव महाराज प्रहलाद को ऐसे आशीर्वाद मिला, परंतु इंद्रदेव को ऐसा आशीर्वाद नहीं मिला कि तुम पुनः अहंकार के शिकार नहीं होगे। केवल चेतावनी दी कि नहीं होना शिकार, परंतु इंद्रदेव शिकार हो गए। कभी कभी इंद्र के साथ ऐसे हो जाता है, कई बार हुआ है। तो हम देखते हैं कि कितना ये ऐश्वर्य को प्राप्त करना कितनी खतरनाक चीज होती है। इंद्रदेव जैसे अति बुद्धिमान व्यक्ति, अति पुण्यवान व्यक्ति, भक्त हैं भगवान के, फिर भी कई बार ऐसे गलती कर बैठते हैं। एक बार उन्होंने विश्वरूप की हत्या की तो ब्रह्म हत्या का दोष उन पर लग गया। दूसरी बार फिर उन्होंने वृत्रासुर की हत्या की, फिर से ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। एक बार उन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर से उनको श्राप मिल गया। एक बार उन्होंने दुर्वासा मुनि का अपमान किया जिसके कारण दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया और वो स्वर्ग के राजगद्दी को खो बैठे। असुरों ने राज करना शुरू किया स्वर्ग लोक के ऊपर। ऐसे बार बार कुछ न कुछ होता है और इस बार गोवर्धन लीला में हम देखते हैं कि इंद्रदेव ने कैसा व्यवहार किया था। तो हमें कृष्ण से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कोई ऐश्वर्य शक्ति आदि भौतिक कोई भी योग्यता नहीं चाहिए, हमें केवल उनकी भक्ति चाहिए। यदि श्री कृष्ण हमें ऐसे गुण देना चाहते हैं या उन्होंने दिया हुआ है तो हमें ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए कि इन गुणों का दुरुपयोग हम कभी नहीं करें, हम इन गुणों का प्रयोग केवल श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए करें और किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। तो जब इंद्रदेव डावाडोल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते, इसलिए हमें और भी सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से जब इंद्रदेव से बात करके श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और वो चुप रहे तो सुरभि माता आगे सामने आई और कहने लगी। क्या कहने लगी हम कल शाम को देखेंगे। तो यदि आपको सुरभि माता सुरभि के वचनों को सुनना है तो आपको कल शाम को आना है। आज जल्दी शुरू किया ना कथा, 8:30 बजे तक। नहीं, फिर अभी भजन भी करना है, सबको घर भी जाना है, लंबा दिन है, सुबह से आप भक्त लोग रहे हैं यहाँ मंदिर में। तो अब हम भजन गाएंगे।